Manthan. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए नेपाल का बदलता राजनीतिक परिदृश्य और सुदृढ़ होते भारत नेपाल संबंध पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत राकेश सूद और आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
भारत और नेपाल 1751 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं, जो कि 5 स्टेट से होके गुजरता है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। भारत और नेपाल के रिश्ते काफी डीप रूटेड हैं और काफी समानताएं हैं दोनों देशों में, चाहे वो लैंग्वेज की बात की जाए, रिलीजन की बात की जाए या कल्चर की बात की जाए। नेपाल में हाल ही में हुए चुनावों के नतीजे आ गए हैं और चुनावों के नतीजों में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी कि RSP ने 165 सीटों में से 125 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की है और ये डायरेक्ट वोटिंग नेपाल की पार्लियामेंट्री चुनावों में ये नंबर्स दर्ज किए गए हैं। ये नतीजे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट FPTP सिस्टम में काउंटिंग के बाद आए हैं और अभी वोट्स की गिनती प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यानी कि PR सिस्टम में चल ही रही है। RSP अब एक ऐसे पोजीशन में आ गई है जो कि मेजॉरिटी में है और नेपाल में सरकार बनाएगी और इसमें ये उम्मीद की जा रही है कि बलेंद्र शाह, जिनकी उम्र 35 वर्ष है, जो नेपाल के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। तो इसी विषय में आज चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं फॉर्मर एम्बेसडर राकेश सूद। अम्बेसडर सूद, आकाशवाणी के मंथन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद।
अम्बेसडर सूद, हम पूरे विषय की विस्तार से चर्चा करें उससे पहले, सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि PR सिस्टम, इनको आप थोड़ा विस्तार से अगर हमें समझा पाए।
ये इस किस्म का चुनाव जो है ये नेपाल में पहली दफा 2008 में हुआ था और इसके अंदर दो सीटें जो हैं नेपाल की, इस वक्त की जो नेशनल असेंबली है उसकी स्ट्रेंथ है 275, उसमें से 165 सीटें हैं जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट से भरी जाएंगी, उस प्रोसीजर से भरी जाएंगी, और 110 सीटें जो हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से भरी जाएंगी। अब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, मान लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें 5 लोग चुनाव के लिए उम्मीदवार हैं, उसका 100 लोग हैं जिन्होंने मत डालना है, 100 लोगों का मत गिरता है। अब उसमें से जिसको सबसे अधिक मत मिले, चाहे उसको मान लीजिए किसी को मिले 30, किसी को मिले 25, किसी को मिले 23 और किसी को मिले 18, उस हिसाब से जिसको 30 मिले उसको हम कहेंगे कि वो ये जीत गया है। अब कई लोगों का ये मानना है कि ये एक तरह से डेमोक्रेटिक नहीं है क्योंकि जो आदमी जीता है वो, उसको तो कुल 30 ही मत मिले हैं, 70 लोगों ने तो और 4 लोगों को मत दिए हैं, तो इसलिए वो सबको कैसे रिप्रेजेंट करेगा। तो इसलिए उसको बैलेंस में लाने के लिए एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है जो कि कई देशों में लगता है, कई देश इस्तेमाल करते हैं और नेपाल ने भी 2008 में ये इंट्रोड्यूस किया था। और इसमें क्या होता है कि पूरे मत जो मिले हैं, मतलब ये 165 सीटों के हिसाब से पूरे मत जो मिले हैं 5 मार्च को जब चुनाव हुआ था, वो हर एक पार्टी के गिने जाएंगे, आम जनता में कौन सी पार्टी के लिए कितना समर्थन है उस चीज को रिफ्लेक्ट करने के लिए ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा।
जी अम्बेसडर सूद, आपने ये काफी विस्तार से हमें समझाया, आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे यहाँ ये समझना चाहूंगी कि ये उम्मीद है, ये कहा जा रहा है कि RSP अब नेपाल में सरकार बनाएगी और बलेंद्र शाह नए प्रधानमंत्री बनेंगे। इस बदलाव को, जो एक जनरेशनल चेंज भी कहा जा रहा है, जिसको एक पॉलिटिकल लीडरशिप में बड़ा बदलाव आया है, जहां पे पुराने नेताओं को वहां की जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया है और एक नए नेता, युवा नेता को वो लेकर आए हैं सरकार बनाने के लिए, प्रधानमंत्री बनाने के लिए, इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं और यहां से अब क्या दिशा आगे की तय होगी?
देखिए, नेपाल की जो मीडियन एज है यानी 50% उनकी आबादी जो है, 50% पॉपुलेशन इसके ऊपर है और 50% इसके नीचे है, वहां की यानी मीडियन एज जिसको कहेंगे हाफवे पॉइंट, वो 26 बरस की है। यानी आप समझिए कि अगर 26, आधी पॉपुलेशन नेपाल की 26 साल से कम उम्र की है। अब सवाल ये है कि इससे हमको ये दिखता है, अभी जो पिछला जो चुनाव हुआ था 2022 में, जो इलेक्शन हुआ है वहां पर, उसमें अगर आप देखें तो ये 165 में से कुल करीब 12 या 14 ऐसे एमपी थे जिनकी उम्र 40 साल से कम थी, ज्यादातर 60 साल से ऊपर के थे। अब की बार क्या हुआ है, एक नई चीज देखने में आई है कि 165 में से 61 एमपी जो हैं उनकी उम्र 40 से कम है, और 61 में से 54 ऐसे हैं जो आरएसपी के हैं। तो एक तरह से ये जो जेनरेशनल शिफ्ट है, और ये भी लोगों को याद होगा कि ये जो इलेक्शन, जो स्नैप इलेक्शन, जो इलेक्शन हुआ है 5 मार्च को, ये इलेक्शन इसलिए हुआ है कि पिछली सरकार ने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि 8 और 9 सितंबर को वहां पर एक जन आंदोलन हुआ था, और वो जन आंदोलन जो था उसको जेन जी आंदोलन कहा जा रहा है, यानी वो यूथ, युवा लोगों के लीडरशिप में वो आंदोलन हुआ था, और वो इतना तेजी से आगे बढ़ा कि 2 दिन में, कि जब वहां पर सरकार ने पुलिस और आर्मी को बाहर लाए और गोली भी चली, 77 लोग मारे गए, वो ज्यादातर यूथ थे। तो उससे एक, और फिर वहां जो प्रधानमंत्री थे शर्मा ओली, उन्होंने, सरकार ने इस्तीफा दे दिया, तो उसके बाद उन्होंने एक इंटरिम सरकार बनाई, एक रिटायर्ड जज सुशीला कार्की जी को लेकर आए, उनको कहा कि आप सरकार बनाइए, तो उन्होंने कहा मैं सरकार बनाऊंगी, पर मेरा एक ही मकसद है कि मैं 6 महीने में चुनाव करवाऊं, और ये चुनाव उस परिस्थिति में हो रहे हैं। तो ये चुनाव के पीछे की कहानी जो है वो एक यूथ मूवमेंट है, और जिस तरह से इसका परिणाम आया है वो भी यही दिखाता है कि इसके अंदर एक जेनरेशनल शिफ्ट आ रहा है। क्योंकि अगर हम देखें तो नेपाल का नया संविधान लागू हुआ था 2015 में, तो 2015 से लेकर 2026 तक करीब 11 साल का समय हो गया, तो ये 11 साल में अगर हम देखें तो 3 बार तो ओली जी प्रधानमंत्री बने, 2 बार माओवादी लीडर हैं प्रचंड वो प्रधानमंत्री बने, और 3 बार शेर बहादुर देवबाजी हैं कांग्रेस के वो प्रधानमंत्री बने, तो 11 साल में 8 प्रधानमंत्री हो गए। तो इसमें कोई एक स्टेबिलिटी नहीं आई, यानी ये अगर हम देखें कि नया संविधान था उससे सब लोग ये कह रहे थे कि इससे नए नेपाल का निर्माण होगा, तो निर्माण के लिए एक जो राजनीतिक स्थिरता चाहिए, तो विकास का काम कैसे होगा। और ये तीनों की उम्र जो है 70 के आसपास, 70 से ऊपर है, चाहे वो ओली हो, चाहे वो प्रचंड हो, और चाहे वो शेर बहादुर देओबा हो। तो लोगों को ये लगने लगा कि भाई ये जो लोग हैं जिनको हम मंत्री बना रहे हैं, जिनको प्रधानमंत्री बना रहे हैं, ये तो हमारी ना, ये हमारी भाषा समझते हैं ना, ये समझते हैं कि हमको क्या परेशानियां हैं ना, ये समझते हैं कि हमारी क्या जरूरतें हैं। तो इसलिए एक तरह से, एक पूरे तरह से एक बदलाव आया है, मुझे लगता है कि वहां की सत्ता में इस चुनाव के बाद सरकार चलाना, अब ये सरकार चलाने के लिए ये पहली दफा आरएसपी ऐसे मौके पे आ रही है। बालेन शाह जो है वो 2022 में काठमांडू के मेयर बने थे, उस वक्त भी वो इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे, और अब वो पहली दफा उन्होंने असेंबली के लिए चुनाव में वो आए हैं, उतरे हैं, और उन्होंने सीधा ही उन्होंने कहा कि मैं केपी शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया था पिछले साल सितंबर में जब आंदोलन हुआ था, कि मैं उन्हीं के खिलाफ लड़ूंगा। तो एक तरह से एक वो चुनौती भी थी, पर अब वो चुनौती अब एक तरह, क्योंकि केपी शर्मा ओली उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से 30 साल से जीत रहे हैं, पर इस बार हारे हैं। अब बालेन शाह, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस अगर आप कहें तो पिछले 3-4 साल का मेयर ऑफ काठमांडू, काठमांडू के मेयर की हैसियत से जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, सरकार चलाना काठमांडू में, और नेपाल की आबादी जो है वो करीब 3.5 करोड़ के आसपास है, तो एक बहुत अलग बात हो जाती है। और नेपाल के लिए अलग अलग चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि जैसे हमारे सुनने वालों ने देखा होगा, समझा होगा, कि अगर इतने साल से आप सत्ता ही बदलते रहेंगे तो विकास का कार्य कैसे होगा, तो विकास के कार्य में तो वो पीछे रह रहे हैं, इसीलिए वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नौकरियां और ये सारी चीजों के लिए अब लोगों को बहुत उसके अंदर अपेक्षा है। और क्योंकि अब उनको इतनी बड़ी मेजोरिटी मिली है आरएसपी को, तो अब ये लाजमी बात है कि एक्सपेक्टेशन भी होगा आम आदमी को, देखिए अभी तक तो ये कह रहे थे कि पिछली सरकारें तो ये कह रही थी कि हमको कोलिशन बनानी पड़ती है, हम निर्णय नहीं ले सकते, हम अच्छी नीतियां नहीं कार्यान्वित कर सकते, पर अब तो इन लोगों के पास तो ऐसा कोई रास्ता है ही नहीं, अब तो इनके पास पूरी मेजोरिटी भी है, तो इसलिए अब इनको सही नीतियां लेनी है और सही तरह से उनको इम्प्लीमेंट करना है, तो
जी
अब ये उनके लिए चैलेंज है, ये नया चैलेंज है एक
जी
तरह से।
जी अम्बेसडर सूदा, आपने बिल्कुल सही कहा कि उनके लिए नया चैलेंज है क्योंकि वो मेजोरिटी में वहां पे आ रहे हैं। यहाँ मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि नेपाल और भारत, मतलब अगर रिश्ते वैसे तो कल्चरली बहुत ही ज्यादा डीप रूटेड और स्ट्रांग है, पर अगर ज्योग्राफी भी देखी जाए तो भी भारत और नेपाल एक नेबर और एक स्ट्रांग पार्टनर जो अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसके हिसाब से, पर बीच बीच में कुछ तनाव आ जाता है भारत और नेपाल के रिश्तों में। अब जब नई सत्ता वहां पे संभाल रही है नेपाल की गद्दी को, तो आपको क्या लगता है कि भारत और नेपाल के रिश्ते किस रूप में आगे बढ़ेंगे, कैसे सुदृढ़ होंगे, और वो कौन से एरियाज हैं जहां पे दोनों ही देशों को एकजुट होके काम करना है?
जैसा आपने खुद ही कहा था कि जो पुरानी पार्टियां हैं, चाहे वो नेपाली कांग्रेस हो, नेपाली कांग्रेस वहां की सबसे पुरानी पार्टी, वो पिछली बार उनकी कोई 90 सीटें थी, अब की बार उनकी कुछ 18 सीटें रह गई। हिमालय वाले केपी शर्मा ओली की जो पार्टी थी जिसकी करीब 80 सीटें थी, उनकी तो शायद 9 ही रह गई हैं। माओवादी जो पार्टी थी उसके 8 बचे हैं। तो अच्छा, अब कांग्रेस के अंदर कोई भी पुराने लीडर चुनाव जीत के नहीं आ पाए हैं, और ना ही ये यूएमएल के अंदर हुआ है, ना ही ये मधेश के जितने लीडर थे, चाहे उपेंद्र यादव, राजेंद्र महतो, शरद सिंह भंडारी, सब के सब हार गए हैं। तो अब ये जो नए लोग आएंगे, अभी तो मंत्रिमंडल कैसे बनेगा, क्योंकि ये लोग 25 साल, जैसा मैंने आपसे कहा, कई एमपी हैं उसके अंदर जो आरएसपी के आए हैं वो 25 साल की उनकी उम्र है। अब ये लोग इंडिया को किस नजर से देखते हैं, इसमें से हो सकता है कई लोग ऐसे हों जो इंडिया में पढ़े भी हैं। अब जैसे अब बालेन शाह को ही ले लीजिए, वो इंजीनियर हैं एजुकेशन से, उन्होंने अपनी बीटेक नेपाल में की थी, फिर एमटेक जो है वो उन्होंने इंडिया में की है इंजीनियरिंग की। तो इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो इंडिया में हो सकता है स्टूडेंट के तौर पर आए हों, या किस तरह ये इंडिया को देखते हैं, अब ये इस वक्त किसी के लिए भी जानना कठिन है क्योंकि ये सब नए लोग हैं। हाँ, जहां तक हमारा सवाल है, हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री ने जो शुरू में कहा था ना, नेबरहुड फर्स्ट,
जी
वो बहुत अहम बात है। उसको कहने के बावजूद भी बीच में उतार चढ़ाव हुए हैं हमारे नेपाल के साथ रिश्तों में, खासतौर पर ओली जी के समय में, पर हमको चाहिए कि अब उनको, अब ये एक नया नेपाल सामने उभर कर आ रहा है, और हमको भी चाहिए कि हम अपनी तरफ से उनको इस तरह देखें कि उनको समझने की कोशिश करें कि इस नए नेपाल में, इस यंग नेपाल में क्या जरूरतें हैं। मुझे ये लगता है जो ट्रेडिशनल हमारे लिंकेजेस हैं उनके ऊपर फोकस करने के बजाय हमको ये चाहिए कि जो यूथ की क्या डिमांड्स हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करें, और मुझे लगता है कि ये ज्यादातर आर्थिक स्तर के ऊपर होंगी। इसके मतलब है कि हम जॉइंट वेंचर, एजुकेशन, पावर ट्रांसमिशन, रोड प्रोजेक्ट्स, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, रेलवे प्रोजेक्ट्स, इन सब चीजों के ऊपर अगर तवज्जो दें तो शायद वो ज्यादा फायदेमंद होगा।
जी एम्बेसडर सूद, आपने काफी विस्तार से हमें ये समझाया कि भारत और नेपाल के रिश्ते किस रूप में आगे बढ़ेंगे या किस रूप में उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और इस चर्चा में आज हमारे साथ भाग लिया, धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे नेपाल का बदलता राजनीतिक परिदृश्य और सुदृढ़ होते भारत नेपाल संबंध पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत राकेश सूद और आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
मंथन।